हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। अब ये सुनकर दादी हैरानी से बोल उठी थीं, लेकिन बेटा, तुम इस तरह से मंदिर से बिना पूजा किए, बिना दर्शन किए वापस क्यों जा रही हो? क्या बात है, तुम ठीक तो हो ना? लेकिन अनामिका तो अभी भी अपनी नज़रें मंदिर के अंदर बैठे उस बुज़ुर्ग पर टिकाए हुए थी जो शायद किसी की पूजा करवा रहे थे। अब वो जल्दी से बोली, नहीं दादी, कुछ इम्पोर्टेंट मीटिंग है। आप लोग पूजा में रहेंगे तो मीटिंग की तैयारी मुझे ही करनी होगी। मैं भूल गई थी, मैं बस गाड़ी में इंतज़ार कर लूँगी। जब तक आप लोग पूजा करेंगे मैं वहीं बैठी रहूँगी, और दर्शन तो मैं पूजा के बाद भी कर लूँगी। आप लोग प्लीज़ आराम से पूजा कर लीजिए। ये बोलकर जल्दी जल्दी उल्टा सीधा बहाना बनाते हुए अनामिका तुरंत वहाँ से निकल गई और सीधे जाकर गाड़ी में बैठ गई। उसने तुरंत ही गाड़ी के काले शीशे चढ़ा लिए, जिससे बाहर का कोई इंसान अंदर नहीं देख सकता था कि भीतर कौन बैठा है। अब गाड़ी में बैठकर वो गहरी गहरी सांसें लेने लगी थी और मन ही मन बोली थी, उन्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, आखिरकार ये सब क्यों हो रहा है? सोचते सोचते अनामिका की आंखें लाल हो गई थीं। वहीं झलक को अनामिका का इस तरह अचानक जाना थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिलहाल उसने सारी बातों को इग्नोर किया और सब लोग आगे बढ़ गए। इधर आकांक्षा को पहले ही पता चल चुका था कि झलक और सिद्धार्थ यहाँ आ चुके हैं और वो उनकी बातें भी सुन चुकी थी, इसीलिए वो फटाफट अनजान बनने का नाटक करते हुए आगे बढ़ी। दादी के पास जाकर उसने उन्हें गले से लगा लिया और सिद्धार्थ को हेलो कहा। फिर वो झलक को भी आगे बढ़कर गले लगाना चाहती थी, लेकिन झलक ने तुरंत प्रतिरोध करते हुए अपने हाथ आगे कर दिए और बोली थी, खबरदार जो मेरे करीब भी आने की कोशिश की। रणविजय को भी उसने बस हल्का सा हाय हेलो किया। अनामिका ने भी उसे कोई खास भाव नहीं दिया। वहीं सिद्धार्थ गौर से आकांक्षा को देखने लगा था। तभी आकांक्षा दादी से बोली थी, दादी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? दादी ने कहा, बेटा, तुम यहाँ मिलोगी हमने सोचा नहीं था। तब जल्दी से आकांक्षा बोली, दादी, हर वीरवार वाले दिन मैं यहाँ आकर पूजा अर्चना करती हूँ, और अभी मेरी किस्मत इतनी खराब चल रही है कि पंडित जी ने मुझे परिक्रमा करने के लिए बोल दिया था, बस वही पूरी कर रही थी। ये सुनकर दादी थोड़ी मायूस हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी लड़की के साथ हुए अन्याय का एहसास उन्हें छू गया हो, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाई। वहीं सिद्धार्थ खुराना बिना किसी इमोशन के दादी को देखकर बोला, दादी, मुझे लगता है कि हमें यहाँ बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, चलकर पूजा पूरी करवा लीजिए, उसके बाद मेरी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग भी है। ये सुनकर दादी ने जल्दी से कहा, अच्छा बेटा, हम बाद में मिलेंगे। ये कहकर दादी झलक का हाथ पकड़कर ऊपर की सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। रणविजय भी दादी और झलक के साथ चला गया, लेकिन आकांक्षा की नज़रें अभी भी सिद्धार्थ पर टिकी हुई थीं। तब सिद्धार्थ ने रुककर आकांक्षा को देखते हुए कहा, आई होप यहाँ आना तुम्हारी किसी चाल का हिस्सा ना हो, अगर ऐसा हुआ तो तुम जानती हो सिद्धार्थ खुराना क्या कर सकता है। तभी आकांक्षा आंखों में आंसू भरते हुए बोली, आप मुझे गलत क्यों समझ रहे हैं सिद्धार्थ, आप जानते हैं कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ, मैंने बस एक छोटा सा झूठ बोला था, उसकी इतनी बड़ी सजा तो नहीं दे सकते, वैसे भी आप मेरी जिंदगी से जा चुके हैं, आप नहीं जानते कि इस वक्त मैं कैसा फील कर रही हूँ, मैं आपको वापस पाने की कोशिश भी नहीं कर रही, मैं तो बस अपनी नॉर्मल जिंदगी जीने की कोशिश कर रही हूँ और आप मुझ पर शक कर रहे हैं। अब जैसे ही आकांक्षा ने एक बार फिर इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश की, सिद्धार्थ ने उसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई, वो बस इतना बोला, आई होप जो तुम बोल रही हो वो सच हो, अगर मुझे लगा कि तुमने एक बार फिर कोई चाल चलने की कोशिश की है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बोलकर सिद्धार्थ तेजी से ऊपर की ओर चला गया। वहीं आकांक्षा ने तुरंत अपने चेहरे से नकली आंसू पोंछ दिए और खुद से बोली, बहुत जल्द तुम्हें मेरे प्यार पर यकीन आ जाएगा सिद्धार्थ, और जब तुम्हें मेरे प्यार पर यकीन हो जाएगा तब तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरे हो जाओगे। ये कहते हुए आकांक्षा की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। फिलहाल वो जल्दी से पंडित जी के पास गई और उन्हें ढेर सारी रकम देते हुए बोली, आपने बिल्कुल सही समय पर 102 परिक्रमा की घोषणा की। असल में खुराना मेंशन की गाड़ियों को देखकर ही आकांक्षा ने परिक्रमा शुरू की थी। उसने मुश्किल से 4-5 परिक्रमा ही की थी और पंडित जी से झूठ बोलने के लिए कह दिया था, जिसके बदले उसने अच्छे खासे पैसे दे दिए थे। फिलहाल आकांक्षा का इरादा वहां तब तक रुकने का था जब तक वो पूरी तरह से सिद्धार्थ और झलक की पूजा को पूरा नहीं होने देती। साथ ही उसका मकसद उनकी पूजा को खंडित करना भी था, जिसके लिए उसने अपना पूरा प्लान पहले से तैयार कर रखा था। वहीं झलक अब जल्दी ही मंदिर के अंदर पहुंच चुकी थी। वहां पहले से ही सारी तैयारियां हो चुकी थीं, क्योंकि दादी ने सारे इंस्ट्रक्शन पहले ही दे दिए थे। अब जैसे ही झलक मंदिर के अंदर गई, अचानक उसके बालों को एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। उसे कुछ अजीब सा एहसास होने लगा, लेकिन तभी वहां पर बैठे हुए एक बुजुर्ग जो पहले से ही किसी की पूजा अर्चना करवा रहे थे, उनकी पूजा पूरी हो चुकी थी, वे उठकर वहां से जाने लगे। लेकिन झलक, जिसे वहां पहुंचते ही कुछ अजीब सा एहसास हो रहा था, अचानक उन बुजुर्ग से टकरा गई। वो बुजुर्ग पूरी तरह से हैरानी से भर गए और गहरी नजरों से झलक को देखने लगे। झलक की आंखें उन्हें कुछ जानी पहचानी सी लगने लगी थीं। वे काफी देर तक झलक को निहारते रहे, लेकिन झलक ने तुरंत उन्हें संभालते हुए कहा, अंकल, आप ठीक तो है ना, आपको कहीं लगी तो नहीं? तभी वो बुजुर्ग अपने ख्यालों से बाहर आए और बोले, नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो? झलक ने अपनी गर्दन हिला दी। तभी सिद्धार्थ तुरंत झलक को डांटते हुए बोला, माफ कीजिएगा अंकल, इस लड़की की आदत है कि आगे चलती है और पीछे देखती रहती है, इसी वजह से आपसे टकरा गई। आई होप आपको ज्यादा तो नहीं लगा होगा। इस तरीके से सिद्धार्थ ने झलक की बेइज्जती कर दी थी, लेकिन वो बुजुर्ग तुरंत झलक के सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, बड़ी प्यारी बच्ची है, कोई बात नहीं बेटा, बच्चों से ऐसी गलती हो ही जाती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये बोलकर अपनी पूजा पूरी करने के बाद वो वहां से चले गए, लेकिन झलक तब तक उन्हें देखती रही जब तक उन्होंने पूरी सीढ़ियां पार नहीं कर ली। उसे अब भी कुछ अजीब सा एहसास हो रहा था, वही एहसास उन बुजुर्गों को भी हो रहा था। झलक सोचने लगी, आखिर मेरा इन बुजुर्गों से क्या लेना देना है, ऐसा अजीब सा कनेक्शन मैं उनसे क्यों महसूस कर रही हूँ। फिलहाल झलक ने इन सब बातों को इग्नोर किया और जल्दी ही पूजा शुरू हो गई। वहीं तब तक आकांक्षा अपने साथ लाए हुए पंडित को किसी तरह ऊपर ले आई थी, जहां खुराना परिवार की पूजा हो रही थी, वहीं पर वो अपनी पूजा भी करने लगी। उसने वहां पहुंचते ही पूजा अर्चना शुरू कर दी। उसी वक्त सिद्धार्थ झलक के ठीक बराबर में आकर बैठ गया, जिसे देखकर रणविजय का चलन के मारे बुरा हाल था, लेकिन दादी के सामने होने की वजह से वो कुछ कह भी नहीं पा रहा था। अंदर ही अंदर वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि झलक और सिद्धार्थ को एक साथ देखे, लेकिन तभी दादी की नजर आकांक्षा पर पड़ी, क्योंकि आकांक्षा की भी पूजा थोड़ी दूरी पर हो रही है। दादी हल्के से मुस्कुरा दी और मन ही मन बोली, ये लड़की तो इतनी संस्कारी भी है, आज से पहले हमें क्यों नहीं पता चला, हो सकता है कुछ लड़कियां अपनी पूजा अर्चना हमेशा छुप कर करती हों ताकि किसी और को पता ना चले, क्योंकि युवाओं में पूजा अर्चना आजकल ओल्ड फैशन या ट्रेंड का हिस्सा नहीं माना जाता है। ये सोचकर दादी ने अपने आप ही अंदाजा लगा लिया और सिद्धार्थ और झलक को मोहब्बत से देखने लगी। दादी दिल से चाहती थी कि झलक और सिद्धार्थ हमेशा के लिए एक हो जाएं और उनके बीच किसी भी तरह की कोई दूरी ना रहे।
लेकिन फिलहाल जैसे जैसे पूजा आगे बढ़ रही थी, आकांक्षा तिरछी नजरों से उन सबको देख रही थी, साथ ही वो दिखावा भी कर रही थी कि उसे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन तभी अचानक आकांक्षा ने अपनी आंखें बंद कर ली और वो तुरंत पीछे की ओर गिर पड़ी। आकांक्षा के गिरते ही पंडित जी घबरा कर चिल्ला उठे, अरे ये क्या हो गया, इस बच्ची को क्या हो गया है, कोई है क्या, प्लीज मेरी मदद करो।